قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ گزشتہ دو ہفتوں میں ہم نے بائبل مقدس میں سے بیاہ اور ازدواجی تعلقات، میرج اینڈ میریٹل ریلیشنز، اور بیاہ ایک مقدس عہد، میرج اے ہولی کووننٹ، کی بابت تعلیم پائی۔ ہم نے یہ سیکھا کہ بیاہ کتنا اہم ہے، خدا کی نظر میں کتنا مقدس ہے، اور ہمیں کس طرح سے شادی شدہ حالت میں زندگی گزارنی ہے، اور بیاہ میں کس طرح سے ہمیں اپنا آپ شامل کرنا ہے۔ اچھی شادی شدہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا جیون ساتھی بھی ہمارے ساتھ متفق ہو۔ تو آج خدا کے کلام میں سے ہم کچھ باتیں سیکھیں گے جیون ساتھی کے چناؤ کی بابت۔ ایک شخص کا چناؤ کیا جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ بیاہ کیا جاتا ہے، اور اس ازدواجی زندگی تو بعد میں شروع ہوگی۔ ضروری ہے پہلے ایک ساتھی کا انتخاب کیا جائے، کیسا ہونا چاہیے اور کس طرح سے چنا جائے بہت اہم ہے، کیونکہ باقی کی زندگی اچھی گزرے گی یا بری گزرے گی بہت زیادہ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم اپنے لیے جیون ساتھی کس طرح چنتے ہیں، کیسا ساتھی چنتے ہیں۔ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ ہم خدا کو موقع دیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے ذہن میں کوئی تصویر بنا لیں، کوئی امیج قائم کر لیں، ہم اپنی چوائسز اور اپنی پسند دوسروں کے سامنے رکھیں یا اس کا اظہار کریں، یا اس پسند یا اپنی چوائس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لیے جیون ساتھی تلاش کریں، سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم خدا کو موقع دیں۔ لیٹ گاڈ ٹو چوز، خدا سے بات کریں، خدا سے کہیں کہ خدا مجھے اپنے لیے یا اپنے خاندان کے کسی فرد کے لیے، اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے، اپنے بھائی یا بہن کے لیے جیون ساتھی کی تلاش ہے۔ خدا تمام کائنات کو بنانے والا ہے، وہ ہر ایک انسان کے ماضی، حال اور مستقبل سے واقف ہے۔ خدا ہر ایک انسان کی عادتوں سے واقف ہے۔ خدا ہر ایک انسان کے بیہیویئرز، اس کی چوائسز سے واقف ہے۔ خدا کو موقع دیں گے تو خدا ہمارے لیے بیسٹ پرسن چوز کرے گا جو فیوچر میں ہمارے لیے سوٹیبل ہوگا۔ ہم کسی انسان کو صرف اتنا جانتے ہیں جتنا وہ دکھ رہا ہے یا دکھا رہا ہے، اس سے پیچھے وہ کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، یا ہم انحصار کرتے ہیں کچھ لوگوں کی رپورٹس پر۔ بعض صورتوں میں لوگ رابطہ کرتے ہیں اپنے پاسبانوں سے، پاسٹر سے، کہ آپ ہمیں رپورٹ دیجئے، فلان جگہ ہمیں پتہ چلا ہے کوئی بیٹا ہے بیٹی ہے اس کے ساتھ رشتے کی بات چلی ہے، آپ ہمیں بتائیں۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خدا کے خادم اپنی کلیسیا کے لوگوں کے بارے میں منفی باتیں نہیں بتاتے، تو کچھ باتیں چھپی رہتی ہیں، یا جو رشتہ کروانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اچھی اچھی باتیں ہی بتاتے ہیں، بہت خوبصورت پورٹری کرتے ہیں امیج۔ تو حقیقتیں ہم انسانوں سے چھپی ہوتی ہیں، لیکن ایک ہستی ہے جو ہر ایک انسان کی حقیقت جانتی ہے، اور وہ خدا ہے۔ خدا کو موقع دیں، خدا سے بات کریں کہ اے خدا میں اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے، اے خدا میں اپنے بھائی یا بہن کے لیے، اے خدا میں اپنے لیے جیون ساتھی کی تلاش میں ہوں، تو رہنمائی کر، تو مدد کر، تو فیصلہ کر اور مجھے اس تک لے جا۔ ابراہم خود نہیں جاتا، ابراہم اپنے نوکر کو بھیجتا ہے کہ وہ اس کے بیٹے اسحاق کے لیے دلہن تلاش کر کے لائے، اور اس کو ہدایات دیتا ہے کہ خدا تیرے آگے آگے اپنا فرشتہ بھیجے گا کہ اس جگہ تجھے پہنچائے، اس گھر تک تجھے پہنچائے، اس لڑکی تک تجھے پہنچائے جو خدا نے چنی ہوئی ہے میرے بیٹے کے لیے۔ अब्राहम को यकीन है कि खुदा मेरे बेटे के लिए एक अच्छा जीवन साथी चुनेगा। और दूसरी तरफ इसहाक पूरा जवान है और वो भी डिपेंड कर रहा है इसी बात पे, खुदा को काम करने दे। इसहाक ने कोई चॉइसेस नहीं बनाई हुई, उसने अपने जहन में कोई इमेज था भी तो वो उसने नहीं शेयर किया होगा, बल्कि यहां सिर्फ खुदा को मौका दिया जा रहा है। और अलीअज़र भी क्या करता है, वो खुद से जाके किसी लड़की को तलाश नहीं कर लेता कि तू मेरे मालिक के बेटे की दुल्हन बन जाना, बल्कि वो भी दुआ करता है, वो भी खुदा से ही बात करता है कि खुदा मेरा सफर मुबारक कर, ऐ खुदा तू ही रहनुमाई कर, कहां जाऊं किधर जाऊं। और खुदा से बात करते हुए वो फिर खुदा से कहता है, अगर ऐसा ऐसा हो तो मैं समझूंगा कि वही तेरी चुनी हुई लड़की है। तो खुदा को मौका दे, सबसे पहले खुदा को मौका दे। अपने खानदान में किसी फर्द के लिए जीवन साथी चुनना है या अपने लिए, खुदा को मौका दे। खुदा आपकी दुरुस्त रहनुमाई करेगा, खुदा कभी आपके लिए गलत फैसला नहीं करेगा, क्योंकि खुदा रास्त है, वो गलत फैसले नहीं करता, उसके फैसले हमेशा दुरुस्त होते हैं। और फिर अपने खानदान के बड़ों को, वालिदैन को मौका दे कि वो फैसला कर सके आपके लिए। इसहाक ने अपने बाप पे और बाप के मुकर्रर किए हुए नौकर अलीआज़र पे छोड़ दिया। रिबका ने अपने मां बाप पे छोड़ दिया कि वो जो फैसला करेंगे मैं कबूल करूंगी। रूत ने फैसला कर लिया कि जो मेरी सास कहेगी रीमैरी करने के लिए, दोबारा शादी करने के लिए, क्योंकि रूत के शौहर की वफात हो चुकी है और वह अपनी सास के साथ रहती है, सास चाहती है कि मेरी बहू की शादी हो जाए और वो अपने शौहर के घर में खुश रहे, वो क्यों बेवगी की जिंदगी गुजारे। तो रूत एक अच्छी बहू नहीं, अब वो अच्छी बेटी बन जाती है। और नौमी अब सास का किरदार अदा नहीं कर रही, बल्कि एक मां बन जाती है रूत के लिए। किसी खातून ने यह बात कही थी कि औरतें ढूंढती हैं रूत जैसी बहुएं, लेकिन खुद नौमी जैसी सास बनना पसंद नहीं करती, कि जो अपनी बहू को अपनी बेटी बना ले और उसका फायदा सोचे, उसकी बेहतरी सोचे, उसका आराम सोचे, उसकी तरक्की सोचे। तो रूत एक अच्छी बेटी बन जाती है, नौमी सास से एक अच्छी मां बन जाती है। और फिर जो कुछ नौमी अपनी बेटी रूत से कहती है, रूत उसे कबूल करती जाती है। यर्मिया 29वें बाब में खुदा ने अपनी कौम से कहा कि तुम अपने बेटों और बेटियों के लिए फैसला करना मेरी मर्जी के मुताबिक उनकी शादियों के लिए। मां बाप को हक दिया गया कि वो अपनी औलाद के लिए जीवन साथी का चुनाव करें। और कुलुसियों बाब नंबर 3 और आयत नंबर 20 में लिखा हुआ है कि हर एक बात में मां बाप के ताबे रहो, उनके फरमा बरदार रहो, उनकी इज्जत करते रहो हर एक बात में। और यह भी एक बात है कि जब मां बाप हमसे कहते हैं, या बुजुर्ग या बड़े जो घर में फैसला करने का इख्तियार रखते हैं, जब वो आपके लिए कोई फैसला कर ले कि ये जीवन साथी आपके लिए अच्छा है, तो उसका एहतराम करना चाहिए, क्योंकि खानदान में बड़े आपकी जिंदगी का नुकसान नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि आप खुश रहो और आपकी जिंदगी मुस्तकबिल में भी खुशियों से भरी रहे। सो जो नौजवान हैं, बेटे बेटियां हैं, उनकी अभी शादियां होने वाली हैं या उनके रिश्ते अभी तय होने हैं, वो अपने खुदा को मौका दें और फिर मां बाप को और घर में जो बड़े हैं उन्हें मौका दें कि वो उनके लिए एक अच्छे जीवन साथी का चुनाव करें। लेकिन औलाद की मर्जी को भी खुदा का कलाम अहमियत देता है। बच्चों की राय का भी एहतराम किया जाए, बच्चों को भी फैसले में शामिल किया जाए और بیٹے بیٹی کے فیصلے کو اہمیت دی جائے۔ ربکا کے معاملے میں ربکا کے ماں باپ نے، اس کے بھائیوں نے ربکا کو زبردستی نہیں کہا کہ ٹھیک ہے تو نے قبول کرنا ہے، قبول کر۔ اس سے بیٹی کو موقع دیا گیا، بہن کو موقع دیا گیا، تو اس رشتے میں راضی ہے تو پھر ہم ہاں کرتے ہیں، اور اس نے قبول کیا۔ کرنتھیوں کا پہلا خط ہے، ساتواں باب، اس کی 39 آیت میں، جب تک کہ عورت کا شوہر جیتا ہے وہ اس کی پابند ہے، پر جب اس کا شوہر مر جائے تو جس سے چاہے بیاہ کر سکتی ہے، مگر صرف خداوند میں۔ یعنی بیاہ کر سکتی ہے خود سے۔ اگر کسی کا جیون ساتھی مر جائے اور وہ نیا جیون ساتھی چننا چاہے تو اسے اجازت ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جیون ساتھی چن لے، لیکن ایک شرط ہے کہ وہ رشتہ خداوند میں جڑا ہونا چاہیے۔ کنوارے بیٹوں بیٹیوں کو بھی فیصلے میں شامل کیا جائے، اور اگر وہ خود سے کسی کو پسند کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن بزرگ اس میں یہ دھیان رکھیں، یہ خیال کریں کہ آپس میں بیٹھ کر پورا خاندان عزیز ساری باتوں کو سوچ کر پھر فیصلہ کریں کہ ہم نے کسے چننا ہے، اپنے بیٹے یا بیٹی کے جیون ساتھی کے طور پر۔ ماں باپ اگر اچھا رشتہ تلاش کر لیتے ہیں تو اولاد ان کے ساتھ متفق ہو جائے، اور اگر اولاد کوئی اچھا مشورہ دے دیتی ہے اپنے والدین کو یا بڑوں کو تو اس مشورے کو پوری اہمیت دی جائے، اس پہ غور کیا جائے، اور اگر وہ خداوند کے معیار کے مطابق پورا اترتا ہے رشتہ تو اسے باندھ لیا جائے، کوئی گناہ نہیں اس میں۔ آزادی سے، اپنی مرضی سے بیاہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن صرف خداوند میں، خدا کے مقرر کیے ہوئے اصول کے مطابق، بغاوت کر کے نہیں، جھگڑے کر کے نہیں، بھاگ کے نہیں، رسوائیاں اور زلالتیں خاندانوں کے منہ پہ مل کے نہیں، پورے خاندان کی رضامندی سے رشتے جوڑے جائیں۔ بڑے چھوٹے سب مل کے متفق ہو کے فیصلہ کریں، اور پھر بائبلی، سماجی اور اخلاقی حدود پامال نہ کی جائیں۔ کچھ معیار بائبل نے مقرر کیے ہوئے ہیں، کچھ رشتے بائبل نے طے کر دیے ہیں۔ احبار کی کتاب کا 18 باب ہے اور 6 آیت سے 23 آیت تک، جن رشتوں میں شادی کرنا ناجائز ہے ان کی فہرست دی گئی ہے۔ سو یہ بائبل کی حدیں ہیں جو بائبل مقدس نے طے کر دی ہیں، کوئی انسان انہیں پار کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور اسی طرح سے ہماری سوشل لمٹس ہیں، ہماری سماجی، ہماری برادری کی لمٹس ہیں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہم جس سٹیٹ میں، جس صوبے میں، جس شہر، جس گاؤں میں رہتے ہیں، اس کی حدود ہیں۔ ان میں رہتے ہوئے بھی ہمیں خیال کرنا ہے کہ ہم ان حدوں کو پامال نہ کریں جو ہمارے سماج میں باندھی گئی ہیں۔ امثال 22 باب کی 28 آیت میں لکھا ہے کہ ان قدیم حدود کو نہ سرکا جو تیرے باپ دادا نے باندھ رکھی ہیں۔ جو باؤنڈریز ہمارے بزرگوں نے سیٹ کر دی ہیں ہم انہیں کراس نہ کریں۔ پاکستان میں کزن میرجز ہو جاتی ہیں، لیکن ماں کی سائڈ سے اگر کزن ہو تو دونوں کزنز میں سے ایک کا ماں کی طرف سے رشتہ ہونا ضروری ہے، لیکن باپ کے بھائی کی اولاد میں ہم مسیحی لوگ شادی نہیں کرتے۔ جو ہماری بلڈ لائن ہے ہم اس بلڈ لائن میں رشتہ نہیں کرتے، یہ ہماری سماجی لمٹ ہے، یہ ہمارے سماج، ہمارے معاشرے کی حد ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ ہاں ہم پھپھو کی اولاد کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں، یا اپنے ماموں یا خالہ کی اولاد سے شادی کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ہماری بلڈ لائن نہیں بنتے. لیکن جہاں بلڈ لائن آ جاتی ہے, جہاں سیم بلڈ آ جاتا ہے, وہاں ہم مسیحی لوگ پاکستانی سماج میں شادی نہیں کرتے. تو یہ سماجی حد ہے, ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. کچھ حدیں بائبل نے بتا دی ہیں کہ کن رشتہ داریوں میں شادی نہیں ہو سکتی, اور پھر کچھ سماج نے لگا دی ہیں, ہم ان حدوں کو بھی پامال نہ کریں. اور پھر اخلاقی حدیں بھی ہیں, ایسے رشتے کہ جو پہلے سے بنے ہوئے ہیں انہیں کھینچ کے, انہیں توڑ موڑ کے کچھ نیا رشتہ بنانے کی کوشش نہ کی جائے, یہ اخلاقی طور پہ برا لگتا ہے. پاکستان میں ایک ہمارے فیملی فرینڈ ہیں, میں ان کا ریفرنس پورا نہیں دے رہا ان کی رسپیکٹ کی خاطر. دو بھائی ہیں, بہت بڑا نام ہے, بڑا ان کی شہرت ہے ہمارے ٹاؤن میں, غیر مسیحی. چھوٹے بھائی کی بیوی اپنے شوہر کے بھائی کو ماموں کہتی ہے. تو رشتے میں اگر وہ اپنے جیٹھ کو ماموں کہہ رہی ہے تو پھر اس کا شوہر اس کا کیا لگتا تھا شادی سے پہلے, وہ بھی تو ماموں ہی ہوگا نا. یہ غیر مسیحیوں میں ہے, مسیحیوں میں میں نے نہیں دیکھا ایسا, کہیں ہے تو میرے علم میں نہیں ہے. یہ غیر مسیحیوں میں, میں ایک مثال دے رہا ہوں, یہ زندہ مثال ہے. ایسے رشتے نہ بنائے جائیں کہ جو اتنے الجھ جائیں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ اخلاقیات بھی کوئی باقی رہ گئی ہے کہ نہیں, کہ پہلے سے موجود رشتوں کو ہم نے بگاڑ ایسے لیا ہے کہ باقی سارے خاندان سے اور رشتہ ہے اور صرف جیون ساتھی سے اور رشتہ ہمارا بنا ہوا ہے جی. سو بائبل نے جو حدیں بنائی ہیں اور جو ہماری سوسائٹی کی حدیں ہیں اور جو ہماری مورل ایتھیکل حدیں ہیں, ہم انہیں پامال نہ کریں. بڑا ٹرینڈ چل جاتا ہے جی, کون سا خدا نے منع کیا ہوا ہے یہ رشتہ, کون سے سگے بہن بھائی ہیں, کون سے ایک باپ کی اولاد ہیں. نہیں, آپ اپنے بزرگوں کی مقرر کی ہوئی حدوں کا بھی خیال رکھیں, آپ بائبل مقدس میں دی گئی ہدایات کا بھی خیال رکھیں, اور آپ سماج میں ایک ایسا عجیب کام نہ کر دے کہ لوگ حیران ہو جائے کہ یہ کیسے رشتے ہو گئے ہیں جی, بڑا بھائی ماموں ہے اور چھوٹا بھائی شوہر, عجیب رشتے. سو ایسے رشتے کرنے سے پرہیز کیا جائے جن میں بائبل, سماج اور اخلاقیات کی حدیں پامال ہونے کا خدشہ ہو, اور اس بات کا بڑا خیال رکھا جائے کہ مسیحی ایماندار شخص کا چناؤ کیا جائے. خدا کا کلام یہ واضح طور پر ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم غیر ایمانداروں کے ساتھ بیٹے بیٹی کا رشتہ نہ کریں, ہم غیر مسیحیوں میں اپنے لیے جیون ساتھی کی تلاش نہ کریں. استثناء باب نمبر 7 میں خدا نے قوم کو واضح طور پر ہدایت دے دی, اور جب خداوند تیرا خدا تجھے اس ملک میں جس میں خدا تجھے بسا رہا ہے لے جائے, تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ تو ان سے کوئی عہد نہ باندھنا اور نہ ان پر رحم کرنا, تو ان سے بیاہ شادی بھی نہ کرنا, اور نہ ان کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں دینا اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لینا. خدا نے منع کر دیا. اور پھر نحمی آخری باب ہے 25 آیت سے, سو میں نے ان سے جھگڑ کر ان کو لعنت کی اور ان میں سے بعض کو مارا اور ان کے بال نوچ ڈالے اور ان کو خدا کی قسم کھلائی کہ تم اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو نہ دینا, کیونکہ لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں غیر قوموں کے ساتھ بنانا شروع کر دی تھی. تو خدا کا بندہ اٹھتا ہے, سختی کرتا ہے ان سے اور کہتا ہے بال تک نوچے ان کے, اور ان سے کہا کہ میں تمہیں خدا کی قسم کھلاتا ہوں کہ تم اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو نہ دینا اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے اور نہ اپنے لیے ان کی بیٹیاں لینا. क्या शाह इसराइल सुलेमान ने इन बातों से गुनाह ना किया? अगरचे अक्सर कौमों में उसकी मानिंद कोई बादशाह ना था और वह अपने खुदा का प्यारा था, खुदा ने उसे सारे इसराइल का बादशाह बनाया, तो भी अजनबी औरतों ने उससे भी गुनाह में फंसाया। सो क्या हम तुम्हारी सुनकर ऐसी बड़ी बुराई करें कि अजनबी औरतों को ब्याह कर अपने खुदा का गुनाह करें? गैर कौम में ब्याह ना खुद करना है और ना अपने खानदान में से किसी का होने देना है। ईमानदार शख्स तलाश करें। मलाकी में भी ऐसी ही बात दोहराई गई है दूसरे बाब में 11वीं आयत में, और दूसरा करिन्थियों 6 बाब और 14वीं आयत है, तुम गैर ईमानदारों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो। गैर ईमानदारों के साथ जब हम ब्याह शादी कर लेते हैं तो हम अपने ईमान पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, फिर हम उनके खुदाओं, उनके माबूदों और उनके ईमान और अकीदों में शामिल हो जाते हैं। सुलेमान अपनी हिकमत और शान और शौकत के बावजूद फंस गया, अजनबी औरतों के बहकावे में आ गया, उनकी मोहब्बत में फरेफ्ता होकर उन्हें अपने जीवन साथी बनाने के शौक में जो कुछ वो औरतें उससे कहती रहीं वो करता रहा, और खुदा का कलाम ये बताता है कि वो गुनाह में फंस गया। सो गैर ईमानदार के साथ, गैर मसीही के साथ रिश्तेदारी ना जोड़े। जीवन साथी की तलाश है अपने लिए, अपने खानदान के किसी फर्द के लिए, मसीही ईमानदारों के बीच तलाश करें। ऐसे शख्स का चुनाव करें जो अपनी जिम्मेदारियां समझे और उन्हें कबूल करे। ऐसे शख्स से रिश्तेदारी ना जोड़ें कि जिसको खानदान ने कहा हो ये कोई काम धंधा नहीं करता, चलो इसकी शादी कर देते हैं, पांव में बेड़ियां पड़ जाएंगी, खुद ही सर पे वजन आएगा तो कोई काम शुरू कर देगा। भाई आप किसी की बेटी के साथ तजर्बा नहीं कर, आप नहीं करो, किसी की बेटी का मुस्तकबिल खराब नहीं करो, अपनी तरबियत की खराबियां आप डाल दोगे किसी और के खाते में कि सारी जिंदगी वो भुगतती रहे। मां बाप अपनी औलाद के लिए, और नौजवान लड़के लड़कियां जो शादी के लिए जीवन साथी की आरजू किए हैं, वो ऐसे शख्स का इंतखाब करें जो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है और फिर उन्हें कबूल भी करता है कि ये मेरी जिम्मेदारियां हैं और मैंने इन्हें पूरा करना है। जिम्मेदारियों से फारिग होने वाला जी मुझे कोई परवाह नहीं है, ऐसे शख्स के साथ निभा नहीं हो सकता, वो कल को आपकी जिम्मेदारी भी छोड़ के चला जाएगा। ऐसे शख्स का चुनाव करें जीवन साथी के तौर पर जो अपनी जिम्मेदारियों को समझे एक शौहर के तौर पर, जो अपनी जिम्मेदारियों को समझे एक भाई या बेटे के तौर पर। ऐसी खातून का इंतखाब करें जो अपनी जिम्मेदारियों को समझे और कबूल करे एक बीवी के तौर पर, और जो एक बेटी और बहन के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारियों को समझे और कबूल करे कि ये जिम्मेदारियां मेरी जात से जुड़ी हुई हैं, मैं इनसे दूर नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, मुझे ये पूरी करनी है, मैं समझता हूं, मैं समझती हूं, ये मेरी जिम्मेदारियां होंगी शादी के बाद, ये मेरे फराइज हैं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जो शख्स समझता है अपनी जिम्मेदारियों को और कबूल करता है कि मैं तैयार हूं जिम्मेदारियों को उठाने के लिए, कि मैं इनको पूरा करूंगा या पूरी करूंगी, ऐसे शख्स का इंतखाब करें। ऐसा ना हो कि जी बाद में देखा जाएगा, कुछ कार कराई लेगा, बिल्कुल भी नहीं। किसी की बेटी का नुकसान ना करें, आप अपनी बेटी के लिए ऐसे शख्स का चुनाव ना करें कि जो कोई काम धंधा नहीं करता, जिसको कोई परवाह नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, और घर वाले सिर्फ पांव में बेड़ियां डालने के लिए उसकी शादी करना चाहते हैं कि सर पे पड़ेगी तो ठीक हो जाएगा। नहीं, इनकार कर दें, सिंपली इनकार कर दें कि जी हम आपसे रिश्ता नहीं जोड़ सकते क्योंकि आपका बेटा ना अपनी जिम्मेदारियां समझता है और ना वो जिम्मेदारियां कबूल करता है। सिर्फ खूबसूरती, दौलत और आला रुतबे के पीछे मत भागे। याकूब ने अपने मामू की बेटी पसंद की थी, राखल खूबसूरत थी, लेकिन लिया ब्याह दी गई। लिया की आंखें चुंदी थी, उसे खूबसूरत नहीं लगती थी, वो लिया से नहीं वो राखल से मोहब्बत करता था। तो बाइबल में लिखा हुआ पैदाइश 29वां बाब है और 31वीं आयत के खुदा ने इस पे निगाह की कि याकूब क्यों ऐसा कर रहा है। खुदा को पसंद नहीं आया कि वो खूबसूरती के पीछे भाग रहा है। जब खुदावंद ने देखा कि लिया से नफरत की गई तो उसने उसका रहम खोला, मगर राखल बांज रही। सिर्फ हुस्न और खूबसूरती नहीं, वो राखल की खूबसूरती देख रहा था, लेकिन खुदा का मंसूबा यह था कि लिया से यहूदा पैदा होगा, यहूदा से यस्सी होगा, यस्सी से दाऊद होगा, और दाऊद से फिर वो दाऊद के तख्त पर बैठने वाला इसराइल का सरदार होगा जो पाक कुमारी मुकद्दसा मरियम के बतन से जन्म लेगा। खुदा ने लिया को चुना था यहूदा की मां होने के लिए, ताकि यहूदा का बब्बर जो दाऊद की असल है वो इस दुनिया में जिस्म लेके आ सका। सो खूबसूरती के पीछे मत भागे, क्योंकि अमसाल 31वें बाब में 30वीं आयत में लिखा हुआ है कि हुस्न धोखा और जमाल बेसबात है। खूबसूरती चली जाती है, कभी भी जा सकती है, इसलिए सिर्फ खूबसूरती के पीछे ना भागे कि जी फिगर देखना है, हमने नाक नक्शा सूरत और रंग देखना है तब हमने शादी करनी है। नहीं, बाइबल में लिखा है कि जर की दोस्ती हर तरह की बुराई की जड़ है। जब हम दौलत के लिए रिश्तेदारियां करते हैं तो फिर बुराइयां पैदा होती हैं उसमें, क्योंकि हमने इंसान को कबूल नहीं किया होता, हमने उसके साथ मिलने वाली दौलत को कबूल किया होता है। हमें इंसान से मोहब्बत नहीं होती, हमें दौलत से मोहब्बत होती है। हम इंसान की परवाह नहीं करते, हमें दौलत की फिक्र रहती है। ना खुद दौलत को देखकर रिश्ता करें और ना आपकी दौलत में अगर किसी की दिलचस्पी हो तो उसको रिश्ता दे। खूबसूरती और दौलत आरजी हैं, बेसबात हैं, इनके पीछे ना जाएं। और आला रुतबे भी, कि बहुत बड़ी पोजीशन पे है लड़का या लड़की, या उसका खानदान बहुत रुतबे वाला है, उनका बहुत बड़ा नाम है, नहीं। बोएज ने अपने लिए एक बेवा को चुन लिया। वो बेवा की सीरत देखता है, बेवा के पास दौलत भी नहीं है, बेवा के पास आला मुकाम भी नहीं है, बेवा के पास कोई बड़ा रुतबा भी नहीं है, उसके पास कोई जायदाद और जागीर भी नहीं है, गुर्बत और मुफलसी है। वो खेत में बालें चुनकर अपने लिए और अपनी मां यानी सास नौमी के लिए खुराक का इंतजाम करती है। कुछ नहीं है उसके पास, कोई स्टेटस नहीं है, लेकिन वो खुदा यानी इसराइल के खुदा के परों के नीचे आ गई थी पनाह लेने के लिए। उसने अपना किरदार खूबसूरत रखा था, उसने अपनी जिम्मेदारियां समझी थी। कि रूत ने यह जाना कि मैं जवान हूं, मेरी सास यानी मां नौमी अब बुढ़ापे में है, उसको नहीं जाना बाहर कमाने के लिए, मैं जाऊंगी, मैं जिम्मेदारी पूरी करूंगी, मैं खुराक कमा के लेके आऊंगी और अपनी मां नौमी को खिलाऊंगी। बॉयज ने उसकी सीरत, उसका किरदार, उसका करैक्टर, उसका जिम्मेदार होना देखा। रूत में उसने आला मुकाम या बड़ा रुतबा या बड़ी दौलत नहीं देखी, किरदार की खूबसूरती देखी। भले वो पहले से शादीशुदा थी, शौहर की वफात के बाद बिल्कुल जायज था कि वो एक नई शादी कर सकती। तो बॉयज ने, बहुत मालदार था बॉयज, लेकिन उसने अपने लिए एक कमजोर गरीब और बेसहारा औरत का चुनाव किया। वो नौकर के जिनके साथ वो खेतों में बालें चुना करती थी, ब्याह के बाद वो उनकी मालिकन हो गई, वो उन खेतों की मालिक हो गई, वो उस जागीर जायदाद जिसमें वो कभी काम करती थी रोटी कमाने के लिए, वो उसकी मालिक हो गई। तो सिर्फ खूबसूरती, दौलत और आला रुतबे मुकाम के पीछे ना जाए। डोंट गो ओनली आफ्टर ब्यूटी, वेल्थ एंड स्टेटस। हो सकता है कि खुदा आपके लिए ये सब कुछ एज वन पैकेज दे भी दे तो बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ इनके पीछे ना भागे। अपनी औलाद के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने लिए जब आप जीवन साथी की तलाश करते हैं तो वो शख्स तलाश करें जो आपको, जो कुछ आप हैं और जिस हालत में आपको कबूल करे, आपके घरेलू हालात को कबूल करे, आपके खानदान के सारे मामलात को कबूल करें कि जैसे हैं वो मेरे लोग होंगे। रूत ने खूबसूरत बात कही नौमी से कि तेरा खुदा मेरा खुदा होगा और तेरे लोग मेरे लोग होंगे। खुदा ने उसको बना दिया बोइस से, ओबेद, ओबेद से यस्सी और यस्सी से दाऊद पैदा हुआ। रूत उस घराने का हिस्सा बन गई कि जिसमें से इसराइल की बादशाहत कायम हुई थी। खुदा हमें सरफराज कर देता है। आप दूसरों को जिन हालात में हैं उनके साथ कबूल करें, उनके मन की सच्चाई देखें, उनके किरदार की खूबसूरती देखें, उनके ईमान की खूबसूरती देखें, ना कि दौलत देखें, ना कि आप जायदाद देखें, ना कि खूबसूरतियों के पीछे भागे। बड़े बड़े खूबसूरत लोग अंदर से बड़े खराब होते हैं, लेकिन कई लोग जो दिखने में लोगों के दुनियावी मेरिट्स पे पूरे नहीं उतरते, वो सुपरस्टार्स जैसे नहीं होते, वो फिल्म स्टार्स या टीवी स्टार्स जैसे नहीं दिखते, उनके जिल्द का रंग या उनका कद या उनकी जिस्मत स्टार्स के जैसी नहीं होती, लेकिन वो अंदर से दुनिया के सबसे नफीस तरीन और खूबसूरत तरीन इंसान होते हैं। बहुत मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं। जाहिर में वो लोगों के ठहराए हुए दुनियावी मेयारात पे पूरे नहीं उतरते, लेकिन वो आपसे, आपके हालात समेत मोहब्बत करते हैं। इंसान जिससे मोहब्बत रख करता है उसकी हर चीज से मोहब्बत करता है। शर्तें नहीं बांधी जाती कि ठीक है मैं तुझसे तो प्यार है, लेकिन तेरे माँ बाप, तेरे बहन भाई, ये तेरे रिश्तेदार, ये मेरे घर में कभी दाखिल ना हो, या कभी तू इनसे नहीं मिल पाएगा या मिल पाएगी। जिससे मोहब्बत होती है उसकी हर चीज से मोहब्बत होती है। सो ऐसे शख्स का इंतखाब करें जो आपको आपके हालात समेत कबूल करे, जैसे हैं वैसे कबूल करे। और सच्चाई इसमें बताना बड़ी जरूरी है, क्योंकि अगर झूठ और धोखा रखा जाएगा तो फिर मामलात खराब हो जाएंगे। इसलिए सच्चाई बताएं और दिखावा ना करें। जो कुछ आप हो और जो आपके हालात हैं वो सच्चाई से बता दें। बनावट ना करें। रिश्तेदारी जोड़ते हुए दूर के रिश्तेदारों की कोठियों और कारों और उनकी जायदादों और उनके मुरब्बों और उनके बैंक बैलेंसेस और उनके स्टेटसेस का इश्तहार ना दें कि हमारे रिश्तेदारों में वो भी है। भाई वो आपके रिश्तेदारों का है, आपका क्या है वो दिखाओ, आप क्या हो वो बताओ। खानदानों में ऐसे भी लोग होते हैं कि जो मैट्रिक पास भी नहीं होते, लेकिन उसके घर के बाकी सारे लोग जो होते हैं ना, वो कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, और कोई किसी फील्ड में एक्सपर्ट है, कोई किसी कारोबार पे है, और वो घर में सबसे कम तर दर्जे का पढ़ा लिखा इंसान होता है। और रिश्ता हो जाता है, उनके घर में 3 डॉक्टर हैं। लड़का खुद क्या करता है, छोड़ो क्या करना, डॉक्टर हैं घर में 3, क्या फायदा उन डॉक्टरियों का, वो उसको मिल जानी है। दौलत जायदाद आपके रिश्तेदारों की है, बड़ा ओहदा मर्तबा रिश्तेदारों का है, तो वो ना बताएं कि जी हम उसके रिश्तेदार हैं तो हमारे साथ रिश्ता कर लो। और आप ऐसे लोगों में रिश्ता भी ना करें कि जनाब वो डिप्टी कमिश्नर साहब के फूफा का भाई है तो उसके औलाद है, क्या जरूरत है इतने दूर के रिश्तेदारों की आला रुतबों और मर्तबों को देखकर शादियां बनाने की। जिस खानदान और जिस शख्स से रिश्ता जोड़ने की बात चल रही है, ये देखो कि वो शख्स बेटा है या बेटी, या उसका खानदान इमीडिएट फैमिली वो किस हालत में रह रहे हैं, उनकी तालीम क्या है, उनका कारोबार क्या है, उनके हालात क्या हैं, उनका ईमान क्या है। कभी सच्चाइयां ज्यादा देर नहीं छुपी रहती। रिश्ते बांधते हुए सच बोले और सच्चाई की खोज भी करें कि सच क्या है, तब रिश्ते बांधे और अपने अंदर वैसी ही खूबियां पैदा करें जो आप अपने जीवन साथी में देखना चाहते हैं। हमें ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मेरी हर बात पे यस करे, ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मैं कहूं एक टांग पे खड़े रहो तो खड़ा रहे या खड़ी रहे, मैं उससे जो कहूं वो करे, जैसे मैं सलूक करवाना चाहूं वो वैसे ही हो जाए। तो भाई जरूरी है कि वो खूबियां अपने अंदर भी तो रखो। पहले हर एक खानदान को हीरा चाहिए अपने कोयले के लिए, अपना भी तो हीरा दो ताकि दो हीरे आपस में मिल जाएं। अपने घर में अपनी औलाद को अच्छी तरबियत नहीं देनी, लेकिन दूसरे से तवक्को करनी है कि हमें दुनिया का बेस्ट इंसान मिले जो हमारे घर में आकर या हमारे घर से जुड़कर बेहतरीन खिदमतें करें हमारी। वो टीवी पे ऐड भी आते हैं कई कि माँ जाती है बेटी के घर तो दामाद पे बड़े वारे वारी जाती है, देखो मेरा दामाद कितना अच्छा है, मेरी बेटी का कितना ख्याल रखता है, कितनी उसकी मदद करता है, कितना समझदार है, कितना अदब करने वाला है। और जब घर आती है और अपने बेटे को बहू के साथ काम करते हुए देखती है तो फिर गुस्सा आता है, ये तो है ही रनमुरीद, ये तो है ही जोरू का गुलाम, ये तो बीवी के नीचे लगा हुआ है। तो फिर उसका शौहर उसे समझाता है कि ये काम तेरा दामाद करे तो वो बहुत नेक है और तेरा बेटा करे तो ये बुरा हो गया। हमें अपनी सोच तब्दील करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी बहू मिले जो सुबह नाश्ते से लेकर रात सोने तक घर के सारे काम बेहतरीन अंदाज में बगैर थके हुए करे, हर एक आने वाले मेहमान की भी अच्छी खिदमत करे, आप जो दो वो खाए, जो आप दो वो पहने, जहां ले जाओ वहां चली जाए, जहां से रोको वहां से रुक जाए, तो ये खूबियां अपने बेटे में भी पैदा करो पहले, कि जब उसके ससुराली उसको कहे कि बेटा बीवी को लेके आ तो लेके जाए, जितने दिन रखना चाहे तो उसको बोले कि मैं आपके पास रहूंगा। जो कुछ आप अपनी बहू से तवक्को करते हैं वो खूबियां अपने बेटे में पैदा करें, वो अपने ससुराल को वो सारी खिदमतें दे सके जरूरत पड़ने पर। अपना बेटा किसी की बात सुनता नहीं और बेटी बहू चाहिए फर्मा बरदार, अपने बेटे को संभाला नहीं जाता और फिर बहू से कहा जाता है कि तू ही इसको कुछ समझा, और बहू चाहिए वो जो हमारे घर के हर एक फर्द और दूर पार के रिश्तेदारों के भी ताबे रहे। रिश्ते जोड़ते हुए ये जहन में रखिए कि अगर आप हीरा तलाश करने जा रहे हो तो अपने घर से भी हीरा निकालो, अपने घर से एक आम घटिया पत्थर के मुकाबले में हीरा आप तलाश करने की कोशिश करेंगे तो बेजोड़ रिश्ते होंगे। अपनी औलादों की तरबियत करें, उन्हें हीरा बनाएं, उन्हें खूबसूरत इंसान बनाएं, उनमें वो खूबियां पैदा करें जो आप चाहते हैं कि आपके खानदान के साथ जुड़ने वाले फर्द में हो। अगर आप चाहते हैं कि आपका दामाद आपके ताबे रहे, आपकी इज्जत करे, आपकी बेटी को कभी दुख ना आने दे और आपके घर की हर खुशी और गमी में बराबर शरीक हो, तो अपनी बेटी को तरबियत दे के भेजिए कि तूने अपने ससुराल में मां बाप देखने हैं, सास ससुर नहीं, तूने उनकी बेटी बनना है, उनकी गमी खुशी में तेरी गमी खुशी होनी चाहिए, उनके फायदे नुकसान में तेरा फायदा नुकसान होना चाहिए, उनके घर का माहौल तुझे ठीक रखना है। दोनों तरफ जिम्मेदारियां हैं, बेटे और बेटी दोनों तरफ जिम्मेदारियां हैं। अगर आप बहुत खूबसूरत किरदार की हामल लड़की चाहते हो तो पहले अपना किरदार ठीक करो। हमारे तो मुआशके सारे जमाने में मशहूर हैं, लेकिन हमें पाक नारी चाहिए, हमें प्योर धुली हुई नारी चाहिए और हमारे मुआशके दुनिया में मशहूर हों, ये नहीं चलेगा। खुद भी पाक बनो, खुद भी अपनी बुरी हरकतों से तौबा कर लो, खुद भी किरदार दुरुस्त कर लो ताकि आप कह सको कि मुझे अच्छे किरदार का हामिल जीवन साथी चाहिए। जब मेरा ही किरदार अच्छा नहीं तो फिर मैं तवक्को कैसे करूं कि मुझे एक अच्छे किरदार का जीवन साथी मिले। दोनों तरफ है, लड़के लड़की दोनों के लिए है। आप अपना किरदार दुरुस्त रखें, फिर अच्छे किरदार का जीवन साथी आपको ढूंढना है। खुद अपने अंदर अच्छी खूबियां पैदा करो, ताबे रहो, फर्माबरदार रहो, दूसरों के तकलीफ और दुख का एहसास करो, अपनी जिम्मेदारियां समझो, उन्हें कबूल करो और उन्हें पूरा करने के लिए अपनी पूरी मेहनत और कोशिश करो। अपने रिश्तों को तवाजुन में रखने की पूरी कोशिश करो, हर एक रिश्ते को उसका मुकाम दो, तो फिर ऐसे जीवन साथी का तलाश करो जो आपकी सोच का हो। आप किसी को कुछ ना समझो और आपका जीवन साथी आए और वो सबको मैनेज करे और सबको संभाल ले, ये नहीं होगा। खुद ठीक हो तब आपको तलाश करने का हक है कि एक अच्छा जीवन साथी मिले। आप अपनी औलाद के लिए जैसा खूबसूरत जीवन साथी चाहते हैं, अपनी औलाद को पहले वैसा बनाओ। खुद वो बने जो आप चाहते हैं कि दूसरों में हो। दूसरों से वैसा सलूक करो जैसा चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ करें। खुदा रास्त रौस से कोई नेमत बाज नहीं रखता। जिनके किरदार में खूबसूरती होगी, सबूर 84 में लिखा हुआ है कि जो किरदार के खूबसूरत हैं, जिनकी रूहें और जिनके मन खुदा के हजूर दुरुस्त हैं, खुदा उन्हें अच्छी नेमतें देगा। खुदा उनसे कोई अच्छी नेमत बाज नहीं रखेगा। और जिसको नेक जीवन साथी मिलता है ना, उसकी कदर मरजान बहुत कीमती है, वेरी प्रेशियस है वो। जिसको जीवन साथी मिलता है वो खुदा की तरफ से तोहफा पाता है। लिखा है कि जिसको बीवी मिली उसने तोहफा पाया। हम ये समझें कि जिसको अच्छा जीवन साथी मिलता है वो खुदा की तरफ से नेमत है, खुदा की तरफ से तोहफा है, और ये उसे मिलता है जो खुदा के साथ ठीक चलता है। सो दूसरों के साथ वैसे ही सलूक करो जैसा चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ करें। दूसरों से तवक्को रखनी बहुत बड़ी और खुद कहना जी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, ये ठीक नहीं है। सो अपने लिए या अपने खानदान के लोगों के लिए जब आप रिश्ते तलाश करें, खुदा को सामने रखें और बाइबल, समाज और इखलाकियात की हदूद का भी ख्याल रखें। जब हम खुद खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बना लेंगे तो खुदा हमारी जिंदगी में अच्छे लोग शामिल करेगा।